Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vijnanamaya Kosa Sevi or Sukhsvara Taranga hai Anandamaya Kosa. आप लोगों ने कई बार इस प्रक्रिया को सुना है। ये जो पांच कोष बताया गया है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और अंत में आनंदमय कोष, ये कोष होने के कारण क्रमशः अंतरंग और बहिरंग भेद से ये विभक्त हैं, क्रमशः दृश्य और दृष्टा के भेद से ये विभक्त हैं, और जो अंतिम कोष पांचवां कोष माना गया है आनंदमय कोष, उस कोष का भी प्रकाशक कोषातीत, पांच कोष से अतीत, उस पांच आनंदमय कोष का अधिष्ठान, आनंदमय कोष का प्रकाशक, वो उससे परे है, इसलिए वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, आप इस तरह विचार कर लो। क्यों तो अन्य दार्शनिकों ने, जैसे न्याय वैशेषिकों ने, परमाणु को सूक्ष्म कहा, लेकिन वेदांती परमाणु को भी स्थूल मानते हैं, क्योंकि वो परमाणु भी दृश्य हैं, जिसके वो सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्म है ये कौन कहता है, किसने देखा है? तो जिसने भी देखा है वह दृष्टा होगा, परमाणु दृश्य हो जाएंगे। परमाणु कभी भी दृष्टा हो ही नहीं सकता है, दृश्य होगा, क्योंकि परमाणु है ये कोई ना कोई जानेगा। जो परमाणु को जानता है वही उस परमाणु का दृष्टा होगा, और जिसने जाना है, जाना गया होने के कारण वो परमाणु भी दृश्य हो गए, तो स्थूल हो गए, दृश्य हुए कि स्थूल हो गए। इसलिए सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म तो दृष्टा है, साक्षी है, जिसको वेदांत ने बार बार साक्षी कहा, उसी के बारे में शिव शब्द का अर्थ वही साक्षी है। प्रसंग चल रहा है, ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। संसार के मनुष्य तब अत्यंतिक शांति का, आनंद का अनुभव करेगा जब उस शिव को जानेगा, अन्यथा आप समाधि में चले जाओ अष्टांग योग साधना के द्वारा, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये अष्टांग योग है, इन अष्टांग योग के माध्यम से बहिरंग सविकल्प समाधि, अंतरंग निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि इत्यादि पतंजलि में इस समाधियों की अलग अलग परिभाषा कर दी गई है। लेकिन आप जितने भी प्रयत्न करके इन अष्टांग योग साधना के द्वारा आप चाहे निर्बीज चाहे अंतरंग समाधि में चले जाओ, निर्विशेष निर्बीज समाधि में चले जाओ, तो वहां आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। लेकिन इतना समझ लो कि वह भी अत्यंतिक शांति वहां पर भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह क्रियाजन्य है, प्रयत्नजन्य है, आपके पुरुषार्थ द्वारा, क्रिया द्वारा, प्रयत्न द्वारा, कर्म द्वारा आपने उसको प्राप्त किया हुआ होने के कारण, क्योंकि वह निर्विकल्प निर्बीज समाधि मूलाविद्या को दग्ध करने में समर्थ नहीं है, मूलाविद्या को नाश करने में समर्थ नहीं है। जो सर्व कारण है, सर्व अनर्थ का कारण है मूलाविद्या, उस मूलाविद्या को नाश करने की क्षमता वाला निर्बीज समाधि नहीं है। तब कहा गया है, स्वयं भगवान राम ने राम गीता में लक्ष्मण को समझाया है, अज्ञानमेवा सही मूल कारणम तदहानमेवात्र विदौ विधीयते विद्यैव तन्नास विदौ पटीयसी न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। उस मूला विद्या को नष्ट करने की क्षमता तो केवल विद्या में ही है, विद्या के अलावा न क्रिया योग में है, न हठ योग में है, न सविकल्प समाधि में है, न निर्विकल्प समाधि में है। निर्विकल्प समाधि में भी वह मूला विद्या तो यथावत रहने के कारण श्रुति कहती है कि अत्यंतिक निवृत्ति अशांत माने अत्यंतिक अशांति की निवृत्ति नहीं होगी, एकांतिक अशांति की निवृत्ति होगी। वहां जो तुमको शांति की अनुभूति होगी वह एकांतिक होगा। जब तक तुम्हारा प्रयत्न होगा तब तक तुम्हें निर्विकल्प समाधि होगी, तब तक तुमको शांति की अनुभूति होगी। जब तुम्हारा संकल्प हट जाएगा, संकल्प हटते ही समाधि हट जाएगा, समाधि हटते ही वह शांति भी हट जाएगा। तब फिर कैसे प्राप्त होगा? तो बोले ज्ञात्वा, कृत्वा नहीं ज्ञात्वा। ये वेदांत में यही अंतर है। वेदांत कभी भी आपकी समस्या का समाधान के लिए कुछ करने के लिए नहीं बोलता। तुम ये करो तो इसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये वेदांत नहीं कहता है। इतनी तीर्थ यात्रा करो तब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, वेदांत नहीं कहेगा। इतने जप कर लो तो फिर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये भी नहीं कहता है। इतनी ध्यान का अभ्यास कर लो तो जहां कहा कि वो तुम्हारी आत्यंतिक समस्या का समाधान का कारण नहीं है, क्योंकि क्रिया के साथ मूल अविद्या का विरोध नहीं है। न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम, कर्म का उस अविद्या के साथ विरोध नहीं, क्योंकि उसी अविद्या से उत्पन्न होने वाली जो कर्म है वो कर्म अपने कारण को विरोध कैसे करेगा? तो फिर उस अविद्या का विरोधी कौन है? तो विद्यैव तन्नास विदौ पटीयसी, क्योंकि विद्या क्रिया जन्य नहीं है। ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान जिसको कहते हैं वो कोई कर्म से पैदा होने वाला नहीं है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, अपना स्वरूप है। उसमें अपने प्रमाद के चलते अविद्या का आवरण आ जाने के कारण हमको समस्या हुई है। जब तक तुम अविद्या के उस आवरण को नहीं हटाओगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म, आपके झोपड़ी में रहते समय की जो आपकी समस्या है, राजमहल में रहते समय वो समस्या यथावत ही रहती है। फर्क नहीं पड़ता है वो समस्या के, झोपड़ी में रहते समय की जो समस्या आपकी, राजमहल में रहते समय भी वो समस्या यथावत है, ज्यों का त्यों है, जरा भी फर्क नहीं है। इस लोक में रहते समय की आपकी जो समस्या है वह स्वर्ग आदि परलोक में जाकर भी वो समस्या यथावत ही है, ज्यों का त्यों रहता है। तमाम स्वर्ग का वर्णन करने वाले शास्त्रों को पढ़ लो, जब उस स्वर्ग की समस्या जब हम पढ़ने को मिलता है तो हम कहते हैं कि उससे अच्छा तो यही है, क्योंकि यहां तो फिर भी कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान हम कर्म के द्वारा कर सकते, पुरुषार्थ के द्वारा कर सकते हैं। स्वर्ग में कोई समस्या आ जाती है तो उसका समस्या तो पुरुषार्थ के द्वारा कर नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग पुरुषार्थ भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है, इसलिए वहां समस्या का समाधान आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। बल्कि यहां समस्या का समाधान आप कर सकते हो, नहीं तो देख लो स्वर्ग का में इंद्र आदि है जो सब कुछ मालिक है, वो भी अशांत है, वो भी परेशान है, है? तो फिर आत्यंतिक शांति कब होगी? तो ज्ञातो शिवम शांति अत्यंत मिति, यहां जानकर आत्यंतिक शांति की प्राप्ति होगी। जानकर माने किसको जानकर? किसको जानकर? जिसको हम जानना चाह रहे हैं उसको जानकर, जिसको जानने के लिए कहते हैं उसको जानकर। तो शिवम ज्ञात्वा, अन्य विकल्प का व्यावर्त कर दिया श्रुति ने स्वयं, ज्ञात्वा जानकर तुम्हारी, तुमको आत्यंतिक शांति की अनुभूति होगी, लेकिन किसको जानकर, जिस किसी को जानकर शांति नहीं होने वाली है। हाँ, तुम अपने स्थूल शरीर को जान लोगे तो इससे शांति होने वाली नहीं है, और तुम स्थूल शरीर का जो विश्व नामक चैतन्य है उसको जानकर भी शांति की अनुभूति नहीं होगी, और तुम सारे जागृत अवस्था का जो ब्रह्मांड है जिसको अर्जुन ने विराट रूप में देखा था गीता के 11वें अध्याय में, जिसको अर्जुन ने 11वें अध्याय में विराट रूप में जो देखा था अर्जुन ने, उसको जानकर भी तुम्हारे को आत्यंतिक शांति नहीं होगी, क्योंकि वह क्या है, वह सब अर्जुन ने दृश्य के रूप में देखा, वह सब परमात्मा की विभूति के रूप में देखा। विभूति के रूप में देखने का मतलब एक बात और ध्यान रख लेना, वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में जो विभूति योग का वर्णन किया है वह विभूति योग उपाधि है, उपाधि जो एक से अनेक रूप में देखा अर्जुन ने, वहीं यमराज को भी देखा, वहीं इंद्र को भी देखा, वहीं भीष्म को भी देखा, वहीं अर्जुन को भी देखा, वहीं कर्ण को भी देखा, अर्जुन खुद अपने आप को वहां देख रहा है। ये सब क्या है, परमात्मा की विभूति है। विभूति का मतलब क्या है, परमात्मा की उपाधि है, और यदि कोई उपाधि को देख लेता है तो वो देखकर देखने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, और कोई यदि उपाधि को जान लेता है तो उपाधि को जानकर उसके जानने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं आपको यूं कहूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं यहां बैठकर, आप लोग सुन रहे हो बड़ी श्रद्धा से, सामान्य लोक व्यवहार में यदि कहा जाए तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, यही मान्यता है, लेकिन वास्तव में मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो आप मुझे देख रहे हैं वो मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरी उपाधि को देख रहे हैं। ये इस उपाधि को देखने मात्र से आप ये नहीं कर पाते हैं कि मैं आत्मानंद को देख लिया है, क्योंकि दृष्टि का विषय स्थूल शरीर है, अन्नमय कोष है, और अन्नमय कोष को देखते ही आत्मानंद को देख लिया, तो आत्मानंद को देखने का प्रयोजन अन्नमय कोष को देखकर सिद्ध नहीं होगा, आत्मानंद को जानने का प्रयोजन अन्नमय कोष को जानकर लोक व्यवहार में भले ही वह प्रयोजन सिद्ध हो जाए, लेकिन जिस ब्रह्म विद्या का प्रसंग चल रहा है वहां उपाधि को देखकर, उपाधि को जानकर तुम्हारे जानने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान के जो विश्वरूप के रूप में, विराट के रूप में जिन विभूतियों को देखा वो सब तो उपाधियों को देखा। अब यदि वास्तव में परमात्मा को देखना है अर्जुन को तो क्या करना पड़ेगा, उन सारे उपाधियों को, जिन जिन उपाधियों को अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा था उन सारे उपाधियों को अथा तो आदेश नेति नेति, इस प्रकार से सारी उपाधियों को बाध करेगा तब निरुपाधिक तत्व निश्चय होगा, तब हम कहेंगे कि तब जाकर अर्जुन को शांतिम अत्यंतम हेति प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अतः तो आदेश नेति नेति तो करना ही पड़ेगा, उपाधि से ब्रह्म विद्या का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसीलिए तो पंचकोश विवेक की बात बार बार आती है, यदि उपाधि को देखकर ही प्रयोजन सिद्ध होता तो फिर ये पंचकोश आपको क्या समस्या थी, क्यों बात करना पड़ता ये पंचकोश का। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये, वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, कौन, शिव, जिसको जानकर तुम्हें आत्यंतिक शांति की अनुभूति होगी, फिर कभी अशांति नहीं आएगा। कभी अशांति नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ, अशांति का कारण जो अविद्या है ब्रह्म विद्या से वो नष्ट हो जाएगा, तो कारण ही नहीं रहा तो फिर कभी भी कार्य नहीं रहेगा। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये, वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, कहां है? तो बोले कलिलस्य मध्ये। शंकराचार्य जी, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है, कलिलम कारणवारिम। अब ये आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द हमने बोल दिया, इतनी से आप नहीं समझ पाओगे। कलिल शब्द का अर्थ बोलते हैं कारणवारी। कारणवारी माने वारी शब्द का अर्थ तो आप समझ रहे हैं, वारी माने जल, और कारण जल का मतलब क्या हुआ? कारणवारी यहां उपलक्षण है, कारण जिस पद में प्रयोग होता है और वारी जिस अर्थ में प्रयोग होता है उस अर्थ में न होकर यहां उपलक्षण है। कारण वारी का मतलब होता है, जैसे आपको और दूसरे उदाहरण दे दें, भाष्यकार ने इसका संकेत भी किया है और श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने वही संकेत किया है। कलिल शब्द का अर्थ पुराण में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, किसके बारे में? तो आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना, प्रसंग चल गया इसलिए मैं स्पष्ट बोल देता हूं। जब कभी भी किसी की शरीर की प्राप्ति की आकांक्षा होती है, शरीर प्राप्ति की आकांक्षा होती है, माता पिता को पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा होती है का अभिप्राय है कि पुत्र के शरीर प्राप्ति की आकांक्षा होती है। हम तो वेदांती है ना, इसीलिए उसी प्रकार के भाषा से बोलेंगे। हाँ, आप लोग कहोगे कि हमको तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। अरे भाई, पुत्र क्या तुम्हारे प्राप्ति की इच्छा होने से प्राप्त होने वाला चीज है पुत्र? फिर तुमको जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई है, पुत्र प्राप्ति की नहीं, पुत्र के शरीर प्राप्ति की इच्छा हो रही है। बात समझ गए ना? क्योंकि पुत्र अर्थात जिस चैतन्य आत्मा को तुम पाना चाह रहे हो, वो तो तुम्हारी ही आत्मा है, तुम्हारे पास ही है, जो पुत्र के रूप में तुम्हारे पास उपलब्ध होने वाला चैतन्य आत्मा है, वह तो तुम्हारी आत्मा है, तुम ही हो, तुमसे अलग वो चैतन्य नहीं है। जो तुम चैतन्य हो वही वो चैतन्य है, जो वो चैतन्य वही तुम चैतन्य हो। इसलिए आत्मा के रूप में तो तुम पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा कर ही नहीं सकते हो और कर भी नहीं रहे हो। हाँ, तब फिर जिस पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, कौन से पुत्र को? उसकी उपाधि वाले को। इसका मतलब हुआ कि तुम उस उपाधि को प्राप्त करने की इच्छा करते हो। तो जब उपाधि को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तब सामान्य लोक व्यवहार में विवाह हो जाता है, तब शादी होती है, तब वहां पति पत्नी का संयोग होता है, सहवास होता है। उस काल में जो दो तत्व का निस्सरण होता है, स्त्री शरीर से रज तत्व का, पुरुष शरीर से वीर्य तत्व का, ये दोनों का सम्मिश्रण होता है जब, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग रहने की अवस्था में पुत्र शरीर की प्राप्ति का कारण नहीं बनेगा। पुत्र शरीर की प्राप्ति का कारण कब होगा? तो जब दोनों तत्वों का सम्मिश्रण हो जाएगा। तब जैसे आप यूं समझ लो, चूने को अलग रखते हो तो वह सफेद रहता है, और कत्थे को अलग रखते हो तो वह कत्था रहता है, लेकिन दोनों को जब सम्मिश्रण करते हो तो सुर्ख लाल हो जाता है। एक दोनों से अलावा तीसरा रंग तैयार हो गया, सुर्ख लाल हो जाता है वो। इसी तरह पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज, ये दोनों जब सम्मिश्रण हो जाते हैं, और सम्मिश्रण होकर जब वह गर्भाशय में पहुंचता है, सम्मिश्रण होने मात्र भी शरीर धारण का कारण नहीं बनेगा, पुत्र शरीर के लिए कारण नहीं बनेगा, वह गर्भाशय में यदि नहीं पहुंचा तो फिर वह बाहर व्यस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शरीर प्राप्ति का कारण नहीं बन पाएगा। जब वो जहां वो पहुंचना है वहां वो पहुंचते हैं दोनों सम्मिश्रण होकर, तब 24 घंटे के अंदर उसकी जो अवस्था होगी, दोनों मिलने के बाद की जो अवस्था होगी 24 घंटे के अंदर, उसको कलीला कहते हैं, उसको कलीला। आपको यूं बता दूं, जैसे दूध अलग है और दही अलग है, आप जब अधिक दही की आकांक्षा करते हैं तब उस दूध को तैयार करके कटोरी में रखते हो, और पहले से तैयार हुआ हुआ जो दही है उसका थोड़ा सा जामन उसमें मिलाते हो, और मिलाने के बाद जब उस दूध दही बनने की प्रक्रिया में जाता है तो ना दूध दूध के रूप में रहता है, ना दही दही के रूप में परिणत हुआ। उस अवस्था में आप उसको यूं कहते हो कि ये कच्चा दही है, दही अच्छी तरह जो जमा नहीं है उसको कच्चा दही बोलते हो। एक उदाहरण की बात हम समझा रहे हैं, वो एक प्रकार से कलील की अवस्था है। वो इसी तरह ये शरीर आरंभक जो द्रव है, जल है। हम एक बार पेपर पढ़ रहे थे तो जो वैज्ञानिक लोग न्यूक्लियर बोलते हैं ना, परमाणु, उसको हिंदी में अनुवाद किया है गुरु जल। हम पेपर पढ़ रहे थे तो बार बार गुरुजल की बात आई न्यूक्लियर के प्रसंग में, परमाणु के बारे में, परमाणु संशोधन, परमाणु प्राप्ति है, तो वो प्रसंग चल रहा था। तो उसी प्रसंग में हिंदी में लिखा हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से छपती थी पहले, तो वहां बार बार गुरुजल ये शब्द आता था। तो हमको समझ में नहीं आया गुरुजल क्या होता है। तो बाद में जब हमने सबसे पूछा तब उन लोगों ने बताया ये गुरुजल का मतलब होता है परमाणु। गुरुजल का अर्थ होता है भारी पानी, शाब्दिक अर्थ तो ये ना है, गुरु माने भारी, जल माने पानी, भारी पानी। इसका मतलब क्या हुआ, पानी इस अर्थ में क्योंकि वह लिक्विड है, भारी इस अर्थ में कि वह अति वजन होता है। पानी का एक लीटर जो मापते हैं हम, लीटर में जब मापते हैं तो उसका जो वजन है, और परमाणु को एक लीटर में नापकर यदि उसको वजन किया जाए तो कई गुना ज्यादा वजन बन जाएगा। समझ गया, परमाणु को फिर उस लीटर में नापकर फिर वजन करेंगे तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। ऐसा वेट, जैसे पारा, पारा भी जल है, मरकरी, मरकरी भी जल है, लिक्विड है, इसीलिए जल है। उसको तो शोधन करके तब जाकर बाद में उसको ठोस बनाया जाता है, अन्यथा तो वो तो तरल है, लिक्विड है। तो वो एक प्रकार का गुरु जल है, ये जो आप पानी पीते उससे तो कहीं ज्यादा वजन है उसमें। तो इसी प्रकार से वह गुरु जल है तो ये कारण जल है, इसी को संस्कृत भाषा में कारणवारी कहा। उस रजवीर्य के मिश्रण की अवस्था को कारणवारी कहते हैं। उसका प्रथम रात्रि यानी भागवत में स्पष्ट शब्द से कलीला शब्द का प्रयोग हुआ है, उस गर्भाशय में पहुंचे हुए उस प्रथमा अवस्था का, उसी को कलील कहा है, शाब्दिक अर्थ है सामान्यतया। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलीलस्य मध्ये, शरीर का अत्यधिक यानी अन्नमय कोष का अत्यधिक सूक्ष्म अवस्था वो है। यूं तो वह भी स्थूल ही, स्थूल शरीर का कारण होने के कारण वह भी स्थूल ही है, लेकिन स्थूल शरीर का अत्यधिक सूक्ष्म अवस्था वह है। स्थूल शरीर को सूक्ष्म अवस्था में तुम देखना चाहो, किस रूप में देखोगे, शरीर को काटकर छोटा टुकड़ा बनाकर देखकर तो सूक्ष्म अवस्था में नहीं देख पाओगे। उस कारणवारी को जब देखोगे तब जाकर उस स्थूल शरीर का अत्यधिक सूक्ष्म अवस्था है वो। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये, उसी कारणवारी के बीच में, गर्भाशय में पहली बार रजवीर ये पहुंचा, उस पहुंचते ही जो कलिल बना उसी में ही वह शिव तत्व सन्निहित है, उसी में ही शिव तत्व मौजूद है, विद्यमान है। तभी जाकर वहां से जीवन आरंभ होगा। उस अवस्था से उस शिव को देखने का अभ्यास करो, शिव के उस अवस्था को चिंतन करो, हाँ। तब जाकर वह धीरे धीरे एतस्मात् किमिवेन्द्र जालम अपरम यद् गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति हस्तमस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम, इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। उस एक कलील एक पानी के बूंद में से इतना बढ़िया शरीर तैयार हो रहा है, और यही कालांतर में इसी उसी पानी के बूंद में आंख निकल आया, उसी पानी के बूंद में कान निकल आया, उसी पानी के बूंद में नाक निकल आया, उसी पानी के बूंद में मुख निकल आया, उसी पानी के बूंद में हाथ निकल आया, उसी पानी के बूंद में पांव निकल आया, उसी पानी के बूंद में सारा शरीर निकल आया। इतनी मात्र से नहीं, वो पानी का बूंद चलने लग गया, वो पानी का बूंद बोलने लग गया, वो पानी का बूंद हंसने लग गया, वो पानी का बूंद रोने लग गया, वो पानी का बूंद खेलने लग गया। इससे बढ़कर और जादूगर क्या हो सकता है। ये तस्माद किमिवेन्द्र जाल अपरम, यही तो सबसे बड़ा इंद्रजाल है, उसके अंदर ही सारे के सारे खेल को खिलाने वाला तत्व क्या है, तो वही कलिलस्य मध्ये शिवम, वो जो शिव तत्व विद्यमान है उसका चिंतन करो। आप लोग इस शरीर में शिव तत्व है ये बात तो मान सकते हो, लेकिन उस कलिल अवस्था में भी शिव तत्व विद्यमान है ये मानना चाहिए। आजकल के समाजवादी लोग कहते हैं उस कलिल में शिव नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है तो शिव नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो उसका नष्ट कर दो, तो नष्ट करने की संस्कृति विकसित हो गई है, है? जबकि वेदांत का कहना है कि वहां भी शिव तत्व पहले से ही विद्यमान है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, वो जो विश्व का जो सृष्टा है, सारे विश्व का जो सृष्टा है वह अपनी उपाधि का भी सृष्टा है, हाँ। ये नहीं समझना कि वो उपाधि में आने के बाद तब जाकर सृष्टा हुआ, तो कहेंगे कि फिर उसकी उपाधि का सृष्टा किसने बनाया, उसकी उपाधि को किसने सृजना की, तो उस उपाधि को भी उसी ने सृष्टि की, उस कलिल को भी उसी ने बनाया, वो जो कारणवारी है वो भी उसी ने बनाया, और कारणवारी बनाकर उस कारणवारी में ही वह शिव तत्व तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वेद की विधि अनुसार उसी में सत्ता के रूप में विद्यमान हो गया। विश्वस्यैकं परिवेष्टितं सृष्टारम अनेक रूपम, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम, उसको चारों तरफ से परिवेष्टित करके वह उसी में विद्यमान है। जैसे आप शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर है, आप बताओ, आप शरीर के अंदर हैं, बाहर तो नहीं है ना। शरीर के अंदर कितनी इंच अंदर है बोलो, शरीर के अंदर कितनी इंच अंदर है। शरीर तो कम से कम एक फुट नौ भी होता, आधा फुट तो छह इंच को तो होगा, यहां से यहां तक कितना होगा भाई, इधर से इधर तक आर पार करो तो नापो तो छह इंच तो होगा जरूर, है ज्यादा ही होगा, सात या आठ इंच नौ इंच भी हो सकता है। और कोई तगड़ा व्यक्ति होगा तो मुझे लगता है कि फुट ही होगा, है? अच्छा शरीर के अंदर तो कितनी इंच गहराई में आप हैं बोलो। अरे बाबा आप शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, शरीर के नीचे, शरीर के ऊपर, व्याप्तम सारे शरीर के एक एक कण कण एक एक अवयव में आप व्याप्त हैं। इसका मतलब बाहर यदि आप न होते तो बाहर की चमड़ी सड़ जाती, क्योंकि आपने देखा है जहां आप नहीं है वहां का मांस सड़ा हुआ देखा है कि नहीं बोलो। जहां आत्मा नहीं है वहां के वो मांस, जहां आत्मा नहीं है वो मांस सड़ा हुआ देखा है कि नहीं। यदि आप बाहर नहीं है तो फिर बाहर की चमड़ी सड़ जानी चाहिए, तो आप अंदर बाहर हैं। इसलिए परिवेष्टितारम, शरीर को सब जगह घेर कर आप बैठे हैं। ऐसे उस शिव तत्व को जानोगे तभी जाकर अत्यंतिक शांति की अनुभूति होगी, अन्यथा ठीक है किसी अन्य उपाय से कुछ समय के लिए शांति मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया है। इसलिए भजन करके शांति मिलती है वो भी कर लो, जप करके शांति मिलती है वो भी कर लो, ध्यान करके शांति मिलती है तो वो भी कर लो, लेकिन आत्यंतिक शांति तो उसी से मिलने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।